सिद्धेज ॐ नमः सिद्धेज ॐ नमः सिद्धेज ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं अन्ताय मज्झरहिया जाय जरा मरणन्तपोरढा संसारलयातमहं जेन चिन्नाजिनं वंदे। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। तृतीय पुस्तक जो तृतीय अर्थाधिकार स्थिति विभक्ति, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 62 पर आ गए, 62 लेक्चर नंबर 13 है, 62 पेज। यहां परिमाण अनुयोग द्वार चल रहा था, उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव कितने हैं और जघन्य सॉरी अनुत्कृष्ट कितने हैं, उसकी बात पहले चल रही थी। तो ओघ की अपेक्षा हमने देखा है कि उत्कृष्ट वाले कितने हैं तो असंख्यात है और अनुत्कृष्ट वाले अनंत है, ये ओघ की अपेक्षा देखा था, याद है ना। अब जहां जहां ये अनंत की बात घटित होती है और जिनमें वो उत्कृष्ट की संख्या असंख्यात है, ऐसी अन्य मार्गणाएं भी बताई। जैसे एकेंद्रियों को लिया तो एकेंद्रियों को पंचेंद्रियों में उत्कृष्ट बंद करके एकेंद्रियों में आया है, ऐसे जीव कितने हैं तो असंख्यात है, उस अपेक्षा असंख्यात कहा, और बाकी अनुत्कृष्ट है वो अनंत है। इसी प्रकार सब देखना है। अभी हम पृष्ठ संख्या 62 पर विशेषार्थ में देखते हैं। इसमें ओघ और आदेश से उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति वाले जीवों की संख्या बतलाई है। पहले हमने भागा भाग में उसका प्रमाण देखा था, प्रमाण यानी कितवे भाग प्रमाण, अब यहाँ एक्चुअल संख्या कितनी है उसकी बात चल रही है। ओघ से आ हुआ है, ओघ करना उसको, ओघ से उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव असंख्यात और अनुत्कृष्ट स्थिति वाले जीव अनंत है, तथा आदेश से संख्या की प्ररूपणा चार भागों में बढ़ जाती है। कुछ मार्गणाएं अनंत संख्या वाली है जिनमें ओघ प्ररूपणा घटित हो जाती है, जहां जहां वो वनस्पति कायिक को या निगोद जिसमें होते हैं वो संख्या अनंत होती है। कुछ मार्गणाएं असंख्यात संख्या वाली है जिनमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों स्थिति वाले असंख्यात हैं, यानी असंख्यात होकर भी उत्कृष्ट भी असंख्यात और अनुत्कृष्ट भी असंख्यात। कुछ मार्गणाएं असंख्यात संख्या वाली है परंतु उनमें उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव संख्यात है और अनुत्कृष्ट जीव स्थिति वाले जीव असंख्यात है। देखेंगे हम थोड़ा उलटकर कल जो हमने पढ़ा था, जो असंख्यात और अनंत वाली जो है, जैसे ओघ के समान जो मार्गणाएं हमने देखी थी उसको दोबारा देखते हैं। 61 पृष्ठ पर 104 नंबर का जो पैराग्राफ है देखो, इसी प्रकार चौथी लाइन, तिर्यंच सभी एकेंद्रिय वनस्पति कायिक निगोद काय योगी औदारिक काय योगी औदारिक मिश्र का योगी, कार्मण का योगी, नपुसक वेदी, क्रोधादि चारों कषाय वाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्णादि तीन लेशा वाले, भव्य अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंगी, आहारक और अनाहारक जीवों के कहना चाहिए। वहाँ अनंत की संख्या घटित होती है और उसमें अपनी अपनी मार्गणा में उत्कृष्ट जो है उसको लेना है। फिर भी वो संख्या कितनी है तो असंख्यात है। पूरे उत्कृष्ट है ना वो 70 कोड़ा कोड़ी वाले, वो उत्कृष्ट नहीं समझना। अपनी अपनी मार्गणा में जितना होता है उतना लेना उसमें। अब ये जो दूसरी बात यहाँ उन्होंने की, जो मार्गणाओं की संख्या असंख्यात है और उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों असंख्यात है, ऐसी मार्गणाएं कौन सी है? तो उसमें हमने देखे थे कि सातों ही पृथ्वियों के नारके, 61 पृष्ठ पर देखना, 105 नंबर, सभी पंचेंद्रिय तिर्यंच, यानी इनकी संख्या तो असंख्यात है, उत्कृष्ट भी असंख्यात है और अनुत्कृष्ट भी असंख्यात है। हमने उसमें देखा था कि भाग कितने भाग प्रमाण है, तो असंख्य दोनों असंख्यात है, तो कौन सा वाला बड़ा है? तो असंख्यात वा भाग उत्कृष्ट है और असंख्यात बहुभाग अनुत्कृष्ट है। अभी ऐसी बात कहाँ कहाँ घटित होती है? लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर सहस्रार तक के देव, सभी विकलेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय, पृथ्वी कायिक आदि चार काय वाले, क्योंकि वो तो असंख्यात होते हैं, वनस्पति कायिक अनंत होते हैं, सभी त्रस, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, वैक्रिक का योगी, वैक्रिक मिश्र का योगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभा, यहाँ उत्कृष्ट की बात चल रही ना, वो नहीं सोचना जो हम कल जगन्य की बात कर रहे थे कि श्रेणी के लास्ट समय में, अंत समय, उसकी बात जगन्य में आएगी, यहाँ उत्कृष्ट की बात हम देख रहे हैं। विभंग ज्ञानी, आभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, संयता संयत, चक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, पीत आदि तीन लेशा वाले, सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि, हर एक में उत्कृष्ट कब होता है, किसके होता है, उसका स्वामी कौन है, उसकी बात हमने देखी थी। तो दोनों की ही संख्या असंख्यात है, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और संगी जीवों के कहना चाहिए कि दोनों की संख्या असंख्यात है। अब हम फिर पढ़ते हैं आगे विशेषार्थ में, दोनों स्थिति वाले, वो दोनों बराबर करना, दो दानों दिख रहा है। कुछ मार्गणाएं असंख्यात संख्या वाली है परंतु उनमें उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव संख्यात है और अनुत्कृष्ट स्थिति वाले जीव असंख्यात है। इसको भी हम कहेंगे असंख्यात वा भाग और असंख्यात बहुभाग, फिर भी वो जो उत्कृष्ट की संख्या कितनी है तो संख्यात है। तो ऐसी कौन कौन सी मार्गणाएं हैं तो यहाँ देखते हैं, मनुष्यों में, जो मनुष्य कहते हैं तो सामान्य मनुष्य लेना, तो उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले कितने हो गए तो संख्यात ही हो गए, क्योंकि उत्कृष्ट किन में होता है? पर्याप्त मनुष्यों में होगा और अपर्याप्त मनुष्य है असंख्यात, तो अनुत्कृष्ट वाले सारे असंख्यात में आ जाएंगे और अनुत्कृष्ट स्थिति वाले असंख्यात है। इसी प्रकार आनंद से लेकर अपराजित तक के देव, हमने ऊपर उनको गिनाया था अन्य देवों को, अभी असंख्यात वाली संख्या देखी थी, उसमें हमने भवनवासियों से लेकर सहस्रार तक के देखे थे। अब यहाँ संख्यात और असंख्यात में उत्कृष्ट वाले संख्यात ही लेने हैं, तो ये अपराजित से लेकर, आनंद से लेकर अपराजित तक के देव और क्षायिक सम्य दृष्टि जीवों के जानना चाहिए, क्योंकि उत्कृष्ट कब होगा उनका? पहला समय में, और बाद में लगातार इतना जो समय है उनमें जीवों की संख्या ज्यादा होगी। पर्याप्त वो दोनों संख्यात है उसकी बात नहीं है, ये इतनी ही है, यानी उत्कृष्ट वाले संख्यात और अनुत्कृष्ट वाले असंख्यात। कुछ मार्गणाएं संख्यात संख्या वाली है जिनमें उत्कृष्ट स्थिति वाले और अनुत्कृष्ट स्थिति वाले दोनों संख्यात हैं। कैसे, कौन कौन से वे मार्गणा? मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी, दोनों ही संख्यात हैं। उनका प्रपोर्शन क्या होगा? हाँ, बराबर है। उत्कृष्ट वाले जो है संख्यात्वा भाग, अनुत्कृष्ट संख्यात बहुभाग हो गए। परंतु दोनों की संख्या कितनी है? तो संख्यात है। तो उनकी मार्गणाएं कौन कौन सी ऐसी है? अभी हमने देखे ना, मनुष्य है, मनुष्यनी है, सर्वार सिद्धि के देव है। क्योंकि उत्कृष्ट कब होगा? पहले समय में, बाद में घटते जाएगी स्थिति, एक एक निषेक गलता जाएगा। आहारक का योगी, आहारक मिश्र का योगी, क्योंकि उनमें तो जब आया है वहां पर तो एक एक निषेक गलता ही जाएगा, तो उत्कृष्ट पहले समय में होगा, बाद में कम होंगे। अपगत वेदी, अकषायी, मनपर्य ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के कहना चाहिए। इन मार्गणाओं में संख्या जीव है, और उत्कृष्ट वाले भी संख्यात है और अनुत्कृष्ट वाले भी संख्यात है। इस प्रकार उत्कृष्ट परिमाणानुगम समाप्त हुआ। अब जघन्य परिमाणानुगम प्रकरण है, ये प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए, दंड देना वहां, फुल स्टॉप। उत्कृष्ट का प्रमाण हमने देखा, अब जघन्य का प्रमाण। जघन्य का प्रमाण यहाँ बिना देखे कितना होगा? ओघ की अपेक्षा अश्विन भाई नहीं बोलेंगे। हाँ जयबेन, आप बता सकते हैं जघन्य किसकी बात चल रही? जघन्य का प्रमाण, हाँ, क्योंकि क्षपक होता है ना सूक्ष्म सांप्राय वाला, हाँ, तो वो संख्यात ही होगे। और वहां कितनी स्थिति बाकी होगी एक समय की? अब जघन्य परिमाणानुगम प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मोहनी की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव कितने हैं? संख्यात है। जो क्षपक के सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में है वो संख्यात होंगे। अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव कितने हैं? तो अनंत है, उन जीवों को छोड़कर बाकी सभी जीव। अब ये उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है वो नहीं, जो जघन्य नहीं है वे सभी अजघन्य हैं। दो में ही डिवाइड करना है, चार नहीं बनाना है, वो भी अजघन्य कहेंगे, 70 कोड़ाकोड़ी वाला भी अजघन्य कहेंगे। जब उत्कृष्ट के साथ अनुत्कृष्ट लगाना और जघन्य के साथ अजघन्य लगाना, तो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट वाले भी अजघन्य कहलाएंगे। तो उन संख्यात के अलावा बाकी जो सभी है उनको हम अजघन्य कहेंगे। इसी प्रकार अभी ये जो संख्यात और अनंत का जो हमने कथन किया है, ऐसा ही कथन और कहाँ कहाँ होगा? तो काय योगी, औदारिक काय योगी, नपुसक वेदी। अब यहाँ हमने क्षपक सूक्ष्म सांप्राय में तो एक समय वाली स्थिति घटित की थी, ये नपुसक वेदी का जघन्य कौन से जीवों को होगा? हाँ, नपुसक वेद के उदय सहित क्षपक श्रेणी चढ़ने वालों को, उसका उदय का अंतिम समय। क्रोधादि चारों कषाय वाले, इनके भी अपने अपना कषाय का अंतिम, उदय का अंतिम समय। अचक्षु दर्शन वाले, क्योंकि अचक्षु दर्शन वाले सभी जीव उसमें कवर होते हैं। चक्षु दर्शन वाले कहेंगे तो केवल चतुरेन्द्रिय पंचेन्द्रिय हो गए, इसलिए इन जीवों को लेना, हमको अनंत और संख्यात ये बात घटित करनी है। इसलिए भव्य और आहारक जीवों के जानना चाहिए। अभव्यों को यहाँ ले नहीं सकते क्योंकि उनमें ये जघन्य नहीं हो सकता कभी, उनमें हमेशा ही अजघन्य ही होगा। हाँ, आदेश की नहीं अपेक्षा, ओग की अपेक्षा। आदेश में जघन्य होगा उनमें, क्योंकि वो एकेंद्रियों की अपेक्षा जितना जघन्य है वो उनमें भी होगा। अब आदेश की अपेक्षा यहाँ देख रहे हैं, आदेश की अपेक्षा यानी मार्गणाओं में अभी घटित करेंगे। नारकियों में मोहिनी की जघन्य और अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव कितने हैं? असंख्यात है। याद है नारकियों में जघन्य किसके होता है? सभी नरकों, हाँ क्या कहा, हाँ आप क्या कहते, असंगी में से आकर उत्पन्न हुआ पहले नरक के लिए, और आप जो कहते हैं वो दूसरे तीसरे नरक में लंबी आयु वाले हैं, पहले में पहले समय को प्राप्त किया, फिर विसंजना की, और फिर आयु के अंत में जघन्य होती है। तो यहाँ कहते हैं ये जीव भी असंख्यात है। इसी प्रकार पहली पृथ्वी के नारकी, इसका अर्थ समझ में आता है? असंगियों में से इतने उत्पन्न हो गए, क्योंकि विग्रह के दूसरे समय में ये हो सकता है, तो जब होगे तो एक ही समय की बात है, और तब भी ये असंख्यात जीव होंगे उसमें। नरक में असंगी कितने जाएंगे? हाँ देखो देखो, संगी पंचेंद्रियों से, जो तिर्यंच में संगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों से असंगी पंचेंद्रियों की संख्या ज्यादा है। हाँ हमको मालूम नहीं तो क्या हुआ आप देखना, वो संदृष्टि अधिकार में एक टेबल है, कौन से जो किससे कितने ज्यादा है, 11 ऐसे उन्होंने संख्या बताई, एक से दूसरे ज्यादा है, ज्यादा है, कितने गुना है, असंख्यात गुना, ऐसी बातें है उसमें। तो सबसे ज्यादा तो असंगियों की संख्या वहां बताई थी। तो इसी प्रकार पहली पृथ्वी के नारकी, पहली पृथ्वी में तो जघन्य तभी होता है विग्रह का दूसरा समय, असंगी में से आया है, असंगी के योग्य जघन्य स्थिति की थी उसने, और फिर बंध भी कम हो रहा है, तो दूसरे समय में नारकी होते हुए भी उसकी असंगी के समान वहां स्थिति है। सभी पंचेंद्रिय तिर्यंच, सभी पंचेंद्रिय तिर्यंचों में जघन्य कब होगा? हाँ, एक इंद्रियों में हत समुत्पत्ति करके आया है, जिसको स्थिति कांड घात वगैरह करके जो एक इंद्रियों में करता है ना, उसको कहते हैं हत समुत्पत्ति, स्थिति का घात करते हैं। लंबी स्थिति लेकर कोई पंचेंद्रियों में से चला गया एक इंद्रियों में, तो भी उसके स्थिति कांड घात होते होते स्थिति अत्यंत जघन्य हो जाती है। स्थिति का अनुभाग का नहीं, स्थिति का घात होता है, हाँ उसको हत समुत्पत्ति कहा। और ऐसा जो पंचेंद्रियों में उत्पन्न हुआ तो उसकी जघन्य स्थिति कहलाएगी, वो भी पहले समय में वहां प्राप्त होगी उसकी, पहले दूसरे समय। लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य ऐसा ही एक इंद्रियों में से आया हुआ, सामान्य देव भवनवासी व्यंतर यहाँ तो एक इंद्रियों में से नहीं आ सकते, असंगी उसमें उत्पन्न होगा, जैसे हमने नरक में घटित किया था। सभी विकलेंद्रिय, वो एक इंद्रिय में उससे विकलेंद्रिय में गया हुआ जीव लीना, पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक, पृथ्वी कायिक आदि चार स्थावर काय, जैसे एक इंद्रिय में हमने देखा है, ये स्थावर काय भी है ना, वे जिन्होंने स्वयं हत समुत्पत्ति कर दिया है और बंध कम कर रहा है, ऐसा जीव लिया। और त्रस लब्धि अपर्याप्तक जीवों का परिमाण जानना चाहिए, कितना है, जघन्य भी असंख्यात है और अजघन्य भी असंख्यात है। यहाँ पृथ्वी काय आदि को, चार काय वाले को लिया, वनस्पति को नहीं लिया, उनमें तो अनंत घटित होगी बात, अनंत घटित होगी, परंतु वहां हत समुत्पत्तिक भी अनंत हो गए, वो भी अनंत हो गए, क्योंकि हमने देखा था वो असंख्यातवा भाग और असंख्यात बहुभाग होता है, अनंत होते हुए भी असंख्यातवा भाग और असंख्यात बहुभाग देखा था हमने, उसकी बात अभी आई नहीं, वो आएगी। दूसरी पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी तक के नारकी, अब हमने इसमें देखा था अंतिम समय में जघन्य होगा, सामान्य मनुष्य, ज्योतिषियों से लेकर अपराजित तक के देव, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनुयोगी, पांचों वचन योगी, वैक्रिक काय योगी, वो एक शब्द है, यह उसके साथ जोड़ देना, अब ये हम ऐसी लिस्ट पढ़ रहे हैं कि जहाँ जघन्य संख्यात है और अजघन्य वाले असंख्यात हैं। पहले हमने कितने देखे थे, दोनों ही असंख्यात असंख्यात देखे थे, यानी वो असंग में से आने वाले वो असंख्यात थे। अब दूसरे पृथ्वी से छठी तक के अंतिम समय में होते हैं और वो भी सभी जीवों के नहीं होगा, जो पहले प्रथम उपशम ये उपशम समेत प्राप्त किया, फिर विसंयोजना की और लंबी आयु के साथ आया है, ऐसे जीव आयु के अंत में हर एक को उतना जघन्य होगा ही, ये बात नहीं है। इसलिए इनकी संख्या संख्यात होगी। सामान्य मनुष्यों में भी जघन्य किन के होते हैं, हमने देखा था शबक सूक्ष्म सांप्राय, वो भी संख्यात होगी। ज्योतिषियों से लेकर अपराजित तक के देव, इनके पास जघन्य कब कहलाएगी? वहां ऑलरेडी वो क्षायिक वगैरह करके आते हैं और फिर ये ज्योतिषियों में उसको नहीं लेना है, ज्योतिषियों में उसके योग्य लेने हैं कि वहां समय को प्राप्त किया है, विसंयोजना की और आयु के अंत में। पंचेंद्रिय पर्याप्त में तो शपक लेना, त्रस पर्याप्त में भी उसको लेना, ये वो वचन योगी मनोयोगी उसको भी लेना। वैक्रिक काय योगी में हमने देखा था सर्वार सिद्धि के देव जो है और जो क्षायिक समय दृष्टि दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरे हैं और वहां उत्पन्न हुए हैं और आयु के अंत में, क्योंकि एक एक निशे गलता जाएगा तो अंत में वैक्रिक काय योग होते हुए उनके जघन्य स्थिति पाई जाएगी। वैक्रिक मिश्र का योग ऐसा ही जीव, परंतु वैक्रिक मिश्र योग के अंत समय में उनके जघन्य होगी। स्त्री वेदी पुरुष वेदी वो अपने अपने वेद के उदय के अंत समय में, इसलिए इन सबको संख्यात लिया है, बाकी जीव असंख्यात होते हैं। विभंग ज्ञानी का याद है जघन्य किसके होता है? हाँ, नवेक रेवेक वाला जीव अंतिम समय में वो मिथ्यात्व में आया है, उसको लिया था हमने, यानी पहले उसने जितना पॉसिबल है उतने घटाया था। अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, ये तो दसवें गुणस्थान वाला लेना। संयता संयत में जघन्य किसको है? हाँ, जो सर्वार सिद्धि को हमने देखा वैसा जघन्य किया था, फिर उत्पन्न हुआ मनुष्यों में और परिहार विशुद्धि के अंतिम समय में जघन्य था। अब ये ऐसा लेना जो परिहार विशुद्धि में से पांचवें गुणस्थान में आया है, तो उसके पहले समय में वहां जघन्य होगा नहीं, संयता संयत के अंतिम समय में, क्योंकि उसका भी स्थिति तो गलेगी और नया बंध तो अंत कोड़ा कोड़ी से कम होगा। चक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, ये तो दसवें गुणस्थान में लेने। पीत आदि तीन लेशा वाले में कैसे किया था घटित? पीत और पद्म में अलग से घटित किया था, जैसे परिहार विशुद्धि में किया था, तो परिहार विशुद्धि वालों के अंतिम समय में पीत लेशा हो या पद्म लेशा हो, और शुक्ल लेशा तो सूक्ष्म सांप्राय में घटित होती है। सम्यक दृष्टि, ये दसवां गुणस्थान। शायिक सम्यक दृष्टि, वो भी दसवां गुणस्थान। वेदक सम्यक दृष्टि, जघन्य कब है? हाँ, जब क्षायिक होने जा रहा है, कृतकृत्य वेदक का अंतिम समय। उपशम सम्यक दृष्टि, हमने देखा था कि ये तो उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है जी, और फिर वेदक होने के एक समय पूर्व, तो उपशम द्वितीय उपशम का अंतिम समय लिया था। सासादन सम्यक दृष्टि, ये भी अंत में। सम्यक मिथ्या दृष्टि और संगी जीवों में, संगी में भी वो दसवां गुणस्थान लेना। मुनि की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव कितने हैं? तो संख्यात है, तथा अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव कितने हैं? असंख्यात है। ये संख्यात असंख्यात का कॉम्बिनेशन वाली मार्गणाएं देखी हमने। हाँ, सामान्य मनुष्यों में संख्यात और असंख्यात। यहाँ असंख्यात और असंख्यात जब लिए ना, जघन्य और अजघन्य वाले, यहाँ भी लिया था ना लब्धि अपर्याप्त। हाँ, परंतु वहां तो वहाँ लब्धि अपर्याप्तक को बताया था और उनके योग्य जघन्य लिया था, यहाँ सामान्य के योग्य जघन्य यानी वो सूक्ष्म सांप्राय वाला लेना है, वहाँ मार्गणा में जघन्य लिया था, यहाँ तो सामान्य मनुष्यों में जो जघन्य होता है तो दसवें गुणस्थान के अंत में होता है। हाँ, उसमें लब्धि अपर्याप्तक आते हैं, परंतु वो अजघन्य में चले गए, क्योंकि देखिए एक जिसको कहते हैं ना आलाप है, एक कौन सा है लब्धि अपर्याप्तक, ये अलग मार्गणा गिनाए, यानी मनुष्य गति में अलग भेद गिनाया, और सामान्य मनुष्य जब कहते हैं तो उसमें पर्याप्त भी है मनुष्यनी भी है और लब्धि अपर्याप्त सब मिलकर उसको सामान्य मनुष्य कहा। उसमें आते हैं जब जब हम सामान्य कहते तो उसमें सभी विशेष उसमें गर्भित है, और जब अलग से भेद कहेंगे तो अकेले उस भेद के लिए क्या है वो वहां बताया। तो वहां जघन्य और अजघन्य हमने देखा था कितने हैं, तो दोनों ही असंख्या थे देखे थे। लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों में अजघन्य जघन्य कैसा घटित किया था, एक इंद्रियों में से वो हत समुत्पत्ति करके आए हुए देखे थे, और सामान्य में जब जघन्य कहेंगे तो दसवा गुणस्थान का अंत समय में क्षपक वाले का। हाँ, आपका प्रश्न है समय मिथ्या दृष्टि कौन सा लेना, कोई सादी मिथ्या दृष्टि भी चढ़ता है और कोई समय दृष्टि भी उतरता है उसमें, तो 24 की सत्ता वाला लेना, उतरने वाला। क्यों? क्योंकि हमको जघन्य, और जब हम उत्कृष्ट की बात करते थे तो मिथ्या तो में से चढ़ने वाला लेना, जो उसने पहले उत्कृष्ट स्थिति बांधी और अंतर्मुहूर्त में तीसरा गुणस्थान प्राप्त किया, ऐसा जीव वहां लेना था, और उसके पहले समय में घटित करना। अभी ये जो जीव लेना है 24 की सत्ता वाला सम्यक्तों में से गिर कर आया है, और उसके सम्यक मिथ्यात्व के अंत समय में जघन्य होगा, क्योंकि अंतर्मुहूर्त तक एक एक निषेक गिल जाएगा और यहाँ तो कुछ नया बंध तो है ही नहीं है, पहले का जो जितना है उससे यहाँ एक एक तो गलते चला जाएगा। ख्याल है ना कैसे घटित करना, उसके योग्य जघन्य कब होगा वो बात देखनी है। अब आगे का पॉइंट, सातवीं पृथ्वी की बात अलग बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ दूसरी पृथ्वी से छठी को लिया था, पहली पृथ्वी को हमने दोनों असंख्यात ऐसा देखा था। अभी सातवीं पृथ्वी में मोनी की जघन्य और अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव कितने हैं, असंख्यात है। अभी यहाँ दोनों को असंख्यात कहा, उसका कारण भी देखेंगे। सातवीं में जब जघन्य कब होता है, पहले में पहले वहाँ उत्कृष्ट आयु के साथ जन्मा है, शुरू में सम्यक तो प्राप्त किया, फिर विसर्जना की, अंतर्मुहूर्त आयु को बाकी है तब मिथ्यात्व में गया, जितनी स्थिति है उससे कम बंध बांधने लगा, मान लेते जहां तक पॉसिबल है वहां तक कम बांधा, यानी स्थिति भी वहां तक गलती गई, उस स्थिति बंध के अंतिम समय में उसका जघन्य होगा। बाद में स्थिति कितनी बांधती, ज्यादा बांधेगे तो एक समय वाला जघन्य घटित होगा, उतनी की उतनी स्थिति बांधता रहेगा अंतर्मुहूर्त काल तक, तो जघन्य भी अंतर्मुहूर्त तक घटित होगा। तो अंतर्मुहूर्त तक लगातार जघन्य 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 है, उस अपेक्षा से वहां जीवों की संख्या ज्यादा होगी। हाँ, एक समय दूसरे से छठी नरक तक, और सातवीं नरक में जघन्य के लिए जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। हाँ, वन पर्टिकुलर टाइम में जीवों की संख्या कितनी होती है, तो अभी वर्तमान में हम इस समय की बात करेंगे। इस समय में कोई सातवें नरक का नारकी उसके पहले समय में होगा, कोई दूसरे समय में, कोई तीसरे, सबकी टोटल गिनेंगे ना एट एनी गिवन पॉइंट। हाँ हाँ, अंतर्मुहूर्त में संख्या ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसमें आए हुए एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त काल घटित होगा, परंतु नाना जीव कोई अंतर्मुहूर्त के पहले समय, कोई दूसरे समय में, कोई तीसरे समय में, इस तरह से उनकी संख्या बढ़ सकती है। यहाँ क्या लिखा है देखते हैं, विशेषार्थ में शायद आया होगा आगे, तो यहाँ दोनों की संख्या असंख्या था इतनी देखेंगे अभी हम। ये यहाँ लिखा तो नहीं है। हाँ देखो यहाँ लिखा है आगे के 64 पृष्ठ पर चौथी लाइन के स्टार्टिंग में, कहीं जघन्य स्थिति का काल एक समय है और कहीं अंतर्मूर्त मिला। अतः जहां जिस प्रकार से जघन्य स्थिति वाले जीवों का कम या अधिक संचय होता है वहां उसके अनुसार उनकी संख्या कही, ये बात होती है। अब अपने यहाँ आते रेशस पुरुष पर, हमने सातवीं किसका, हाँ एक ही अंतिम समय में ही हो सकता है। हाँ वो भी कौन से जीवों के, जो उत्कृष्ट आयु के साथ आए हैं एक कंडीशन, और जिन्होंने वहां जाते ही शुरू में ही समय को प्राप्त किया है। तीसरी कंडीषन, अंतर्मूर्त के अंदर ही उन्होंने विषय योजना की है और लगातार सम्यक दृष्टि रहे। ऐसे कितने गल जाएंगे ना, बीच में उन्होंने मिथ्यात्व में भी गए फिर समय को प्राप्त किया, ऐसे बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं। तो हमारी कंडीशंस पूरी करने वाले संख्यात ही जीव होंगे जिनकी मिनिमम पॉसिबल जो स्थिति है वो अंतिम समय में घटित होगी, इसलिए उनको संख्यात कहा। अब यहाँ जो जीव है यह असंख्यात है, दोनों असंख्यात है क्योंकि यह अंतर्मूर्त काल घटित होता है इसलिए उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। तीर्यंचों में उत्कृष्ट ही संख्या, जहां जहां संख्या बताई है वहां उत्कृष्ट ही संख्या गिननी, क्योंकि अभी हमने लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य में कितनी देखी, दोनों असंख्यात देखी है ना। तो कभी कभी तो लब्धि अपर्याप्त मनुष्य एक भी नहीं होता, या मान लेते दो चार हो गए तो असंख्यात कैसे घटित होगा। तो जब घटित हो सकता है उत्कृष्ट उसकी अपेक्षा हमेशा बात की जाती है, अधिक से अधिक कितने हो सकती है। यहां भी अधिक से अधिक जीवों की अपेक्षा लिया है, हमेशा हो सकता है कोई भी नहीं होगा वहां उत्कृष्ट वाला, सॉरी जघन्य वाला, जब हो गए तो एक भी हो सकता है और असंख्यात भी हो सकते हैं। तो असंख्यात उत्कृष्ट है तो उत्कृष्ट संख्या बता दी उन्होंने। तिर्यंचों में, अब तिर्यंच पूरा कहा है, तिर्यंचों में मुनि की जघन्य और अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव कितने हैं, अनंत है। ये समझ में आया, कल इसकी हमने बहुत चर्चा की थी। दोनों में कितने हैं, तिर्यंच यानी सभी तिर्यंच लेना, तो जघन्य स्थिति वाले भी अनंत है और उत्कृष्ट वाले भी, सॉरी अजघन्य वाले भी अनंत है। ये अनंत की संख्या तो निगोद में और एक वनस्पति कायिकों में घटित होती है, या जनरल कहो तो एक इंद्रियों में घटित होती है अनंत भान। तो अनंत जीव जघन्य स्थिति वाले हैं और अनंत अजघन्य है, उनका प्रपोर्शन कितना है। तो हमने उनको क्या देखा था कल, असंख्यात विभाग और असंख्यात बहुभाग, फिर भी उसकी वैल्यू अनंत है। कल हमने वो 50 लाख को गुणा किया था ना, भाग दिया था 100 से, तो 500 को भी भाग दे सकते हैं और 50 लाख को भी दे सकते हैं। एक भाग की वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू अनंत है। जो असंख्यात वा भाग है वो भी अनंत है, जो असंख्यात बहुभाग है वो भी अनंत है, क्योंकि इतने सारे एकेंद्रीय हत समुत्पत्तिक रूप से वहां है। आपको याद होगा पहले हमने देखा था क्षपित कर्मांशिक जिसको कहते हैं, कि जिन्होंने उपशम श्रेणी भी मान के आए, कर्म बहुत सारा खिपाया है, और ऐसे जीव अभी संयमी भी है, भावलिंगी संत भी है, और कालांतर से ऐसे परिणाम हो जाते और त्रस्त की स्थिति पूरी होती तो चले गए निगोद आदि में, पहले ही इतना कर्म खिपाया है और वहां जाके और ये सारे हत समुत्पत्ति, ऐसे जीव कितने वहां पड़े हैं, असंख्यात है ऐसे भी जीव। हाँ, एक इंद्रिय में जाएंगे ना, इतना काल कहाँ बिताएगा, अभी त्रस्त स्थिति पूरी हुई है, भले समय दर्शन प्राप्त किया था मगर अभी मोक्ष योग्य नहीं हुआ है वहां, तो काल पूरा हो गए, परिणाम ऐसे हो गए एक इंद्रियों के योग्य, तो वहां कितना ही काल बिताएंगे, फिर आएंगे और मोक्ष भी चले जाएंगे। यहाँ अनंत है तो जनरल सबकी बात है, परंतु जो करके आए हैं ना उनके, हाँ क्षपित कर्मांशिक जीव वो असंख्यात हो गए। जघन्य वाले, जघन्य स्थिति की है हमारा यहाँ की बात नहीं चल रही थी, दूसरा विषय चल रहा था कि ऐसे कितने क्षपित कर्मांशिक जीव एकेंद्रीय आदि में पड़े हैं। आपको याद होगा ये बादर निगोद वर्गणा और सूक्ष्म निगोद वर्गणा के, तब हमने उसकी चर्चा की थी, ऐसे कितने ही जीव उसमें पड़े हैं। हाँ देखो ये हमने तिर्यंच की बात देखी थी, यानी जघन्य भी अनंत है और अजघन्य भी अनंत है, इसी प्रकार सभी एकेंद्रिय, ये दोनों अनंत वाली बात कहाँ कहाँ घटित होती है, तो एकेंद्रिय इन जनरल बात करेंगे तो घटित होती है। सभी वनस्पति कायिक, सभी निगोद, ये उसके और भेद करके समझा रहे हैं। इसलिए तो क्या एकेंद्रिय में वनस्पति नहीं आई, आई है, परंतु अगर काय की अपेक्षा भेद करेंगे तो पृथ्वी अग्नि वगैरह इन कायिकों में नहीं होगा, वनस्पति कायिकों में होगा। वनस्पति कायिक के भी अगर भेद करेंगे तो प्रत्येक में नहीं होंगे, निगोद में होंगे। औदारिक मिश्र काय होगी, कार्मण काय होगी, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, कृष्ण आदि तीन लेशा वाले, अभव्य, देखो अभव्य में अनंत अनंत घटित किए ना, जघन्य वाले भी अनंत, अजघन्य वाले भी अनंत, मिथ्या दृष्टि, असंग और अनाहारक जीवों के कहना चाहिए। अचक्षु दर्शनी वाले को क्यों नहीं लिया? बहुत अच्छा, वो सूक्ष्म सांप्राय उसमें घटित होता है अचक्षु दर्शन वालों को, हाँ उसमें भले जीव अनंत है फिर भी उसके जगन्य वाले संख्यात हो गए उसमें, और बाकी अनंत, यानी वो ओक के समान उसका कथन हुआ था। अब नीचे जो मूल में संख्यात है तो उसके जगन्य भी संख्यात कहेंगे, अजगन्य भी संख्यात कहेंगे, भले वो संख्यातवा भाग और संख्यात गुणा है तो भी उनकी प्रमाण कितना है तो संख्यात है। तो ऐसे कौन कौन से है? पर्याप्त मनुष्य, पर्याप्त मनुष्यनियों में मोहिनी की जघन्य और अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव कितने हैं? संख्यात है। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि के देव, आहारक का योगी, आहारक मिश्र का योगी, अपगत वेद वाले, अकषायी, मनपरे ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के जानना चाहिए। जो अभी हमने पढ़ा है जघन्य के बारे में, वो उसी की अभी चर्चा फिर विशेषार्थ में करते हैं। वो उसे जघन्य स्थिति क्षपक जीव के दसवें गुणस्थान के अंतिम समय में प्राप्त होती है, अतः ओघ की अपेक्षा जघन्य स्थिति वाले जीव संख्यात है। जब होगे तभी की बात है ना, कभी कभी हो सकता है कभी नहीं भी है, वो तो हमने नाना जीवों की अपेक्षा जो भंग विषय देखे थे उसमें देखा था उसको। तथा इनके अतिरिक्त मोहिनी कर्म की सत्ता वाले शेष सब जीव अजघन्य स्थिति वाले हुए, सब को लिया ना, उत्कृष्ट हो या अनुत्कृष्ट हो, सबको हम अजघन्य कहेंगे, और उनका प्रमाण अनंत है। अतः ओघ से अजघन्य स्थिति वाले जीव अनंत कहे, तथा मार्गणाओं की अपेक्षा विचार करने पर कहीं ओघ जघन्य स्थिति संभव है और कहीं आदेश जघन्य स्थिति संभव है। जैसे पंचेंद्रियों की अपेक्षा बात करेंगे तो ओघ की जघन्य स्थिति संभव है। कितने हैं वो? संख्यात है, बाकी अनंत है, उसको नहीं लेना है। जघन्य स्थिति के बारे में समझना। नारकियों में अगर बात करेंगे तो आदेश की जघन्य स्थिति संभव है, वहां के योग्य। इसी प्रकार कहीं जघन्य स्थिति का काल एक समय है और कहीं अंतर्मूर्त, अतः जहाँ जिस प्रकार से जघन्य स्थिति वाले जीवों का कम या अधिक संचय होता है, वहाँ उसके अनुसार उनकी संख्या कही। किंतु अजघन्य स्थिति वालों की संख्या सर्वत्र अपनी अपनी मार्गणा की संख्या के अनुसार जानना चाहिए, अर्थात जिस मार्गणा में अनंत जीव है, उस मार्गणा में अजघन्य स्थिति वाले जीवों की संख्या अनंत जानना, तथा जिस मार्गणा में जीव असंख्यात या संख्यात है, उसमें अजघन्य स्थिति वाले जीवों की संख्या असंख्यात या संख्यात जानना। इस प्रकार परिमाण अनुगम समाप्त हुआ। अब हमारा क्षेत्रानुगम चलेगा। कल हमने देखे थे ना, कितना, 7 नंबर पर देखे थे सारे, 8 नंबर पर। ये परिमाण के बाद क्षेत्र, स्पर्शन काल और अंतर चलेगे, तो 16 नंबर का अनुगम चलेगा अपना। क्षेत्रानुगम दो प्रकार का है। जब हम क्षेत्र कहते हैं तो क्षेत्र में कैसा समझना, भी उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव कितने क्षेत्र में है और अनुत्कृष्ट कितने में है, वैसे ही जघन्य कितने क्षेत्र में और अजघन्य कितने हैं, दो अलग अलग लेना है। जब उत्कृष्ट की बात करेंगे तो बाकी सभी अनुत्कृष्ट कहलाएंगे, जब जघन्य की बात करेंगे तो बाकी सभी अजघन्य कहलाएंगे। तो उनका, वो जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, उनकी अवगाहना का गुणों गुणित करो उनके क्षेत्र प्रमाण से जो कुछ है संख्या को। तो इसमें भी जघन्य और उत्कृष्ट क्षेत्र बताएंगे। ये जघन्य और उत्कृष्ट क्षेत्रानुगम जो है, यानी जघन्य विभक्ति की अपेक्षा क्षेत्र और उत्कृष्ट विभक्ति की अपेक्षा क्षेत्र। हमने जीवों की संख्या तो देखी, अभी यहाँ क्षेत्र बताएंगे। उनमें से उत्कृष्ट क्षेत्रानुगम का प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ निर्देश की अपेक्षा मोहनीय की उत्कृष्ट विभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, पहले में पहले ओघ की अपेक्षा उत्कृष्ट विभक्ति किन जीवों को होती है, हाँ, पंचेंद्रिय, सभी पंचेंद्रियों को होगी क्या? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों को, और वो भी उत्कृष्ट स्थिति बांधते समय होगी। तो ऐसे जीव कितने क्षेत्र में रहेंगे, तो कहते लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र में रहते हैं। अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, इनके अलावा पूरे लोक में, तो सब लोक में रहते हैं। इसी प्रकार तिर्यंच, यानी तिर्यंचों में उत्कृष्ट स्थिति वाले कितने हैं, तो असंख्यात विभाग में, लोक के असंख्यात विभाग में, और तिर्यंचों में अनुत्कृष्ट स्थिति वाले पूरे लोक, क्योंकि वो सूक्ष्म एकेंद्रिय भी तिर्यंच ही है, सभी एकेंद्रिय, यानी एकेंद्रियों में भी उत्कृष्ट स्थिति वाले, ऐसे लेना। एकेंद्रियों में उत्कृष्ट स्थिति वाले कौन है, हाँ, देव जो है उत्कृष्ट स्थिति बांध के एक समय में मरकर बादर एकेंद्रियों पृथ्वी काय आदि में, तो उनकी अपेक्षा लेना यहाँ पर। उसमें भी ऐसे जीव लोक के असंख्यात विभाग में, क्योंकि ऐसे जीव थोड़े हैं और बाकी अनंत है, तो पूरे लोक में। पृथ्वी कायिक, बादर पृथ्वी कायिक, बादर पृथ्वी कायिक अपर्याप्त, आपका कहना है यहाँ बादर को भी लिया, क्योंकि बादर जीव तो लोक के असंख्यात विभाग में रहते हैं, हाँ, तो यहाँ बादर को क्यों लिया, पूरा लोक में असंख्यात भाग और पूरा लोक क्यों, हाँ, आपने ही उत्तर दिया। जब पूरा लोक है तो मारणांतिक की अपेक्षा होगा, क्योंकि बादर जीव है वो सूक्ष्म में उत्पन्न हो गए, मारणांतिक करके पूरे लोक में कहीं भी उत्पन्न हो गए, उनकी अपेक्षा लेना। बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्त, जल का एक, बादर जल का एक, बादर जल का एक अपर्याप्त, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त को छोड़ा, बादर जल का एक पर्याप्त को छोड़ा, जैसे कल हमने देखा था ना, देव जहां जहां उत्पन्न होते हैं पर्याप्तों को कहां लिया आगे? बांदर वायु का एक पर्याप्त तो ठीक है, वो तो लोक के संख्यात्व भाग में हो गए, यहाँ अनुत्कृष्ट और उत्कृष्ट दोनों ही लोक के असंख्यात विभाग में होंगे। यहाँ जो हमने दिया है उत्कृष्ट वाले कितने क्षेत्र में हैं, तो लोक के असंख्यात विभाग में, और अनुत्कृष्ट स्थिति वाले कितने हैं, तो पूरे लोक में। ये वर्तमान क्षेत्र बता रहे हैं ना अभी, स्पर्श में तो और बातें आएगी ज्यादा। तो यहाँ जो अभी हम देख रहे हैं उसके योग्य जो उत्कृष्ट जो होगा, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट की बात चल रही है ना यहाँ पर, तो यहाँ बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त आदि जो है वो दोनों ही असंख्यात विभाग में लिए। हाँ, यहाँ जो पूरा लोक लिया है तो वहां उनमें जो उनमें से आने वाले भी जीव लेना है, उनमें उत्पन्न होने वाले भी जीव लेना है, दोनों तरफ से लेना है। पर्याप्त में आने वाले जो उत्कृष्ट की स्थिति वाले अलग होते हैं जीव, जो देव में से ही आते हैं, उपपाद की अपेक्षा वहां थोड़े जीव घटित होते हैं, क्योंकि उपपाद भी लेना है मारणांतिक भी लेना है, दोनों लेना है ना। और इन जीवों की असंख्यात संख्या है, और उपपाद वालों में तो ज्यादा घटित होगी, और कहीं से भी आ सकते हैं। यहाँ अनुत्कृष्ट पूरे लोक में कहाँ कहाँ है, तो ये बादर वालों को छोड़कर अन्य को घटित किया यहाँ पर। हाँ, बादर पर्याप्त, अभी हम पढ़ रहे थे जल का एक की बात पढ़ रहे थे, जल का एक अपर्याप्त, अभी अग्नि का एक को पढ़ेंगे। अग्नि का एक बादर, अग्नि का एक बादर, अग्नि का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्नि का एक सूक्ष्म अग्नि का एक पर्याप्त, सूक्ष्म अग्नि का एक अपर्याप्त, वायु का एक बादर, वायु का एक बादर, वायु का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायु का एक सूक्ष्म वायु का एक पर्याप्त, सूक्ष्म वायु का एक अपर्याप्त, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, सभी वनस्पति का एक, सभी निगोद काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, कार्मण काय योगी, नपुसक वेदी, क्रोधादि चार कषाय वाले, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्ण आदि तीन लेशा वाले, भव्य अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी, आहारक और अनाहारक जीवों के कहना चाहिए। ये तो लोक के असंख्यात भाग और अनुत्कृष्ट स्थिति वाले पूरा लोक। अब आदेश की अपेक्षा बात करेंगे, वो तो जो वो के समान जहां जहां है वो बताया था अभी। दोनों ही असंख्या तो भाग लिया। हाँ, जीवों की संख्या, हाँ नहीं होता है क्योंकि उसमें उपपाद जो पकड़ा है ना, यहाँ उत्कृष्ट स्थिति की भी बात है ना, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट की बात है। बाद हाँ, उत्कृष्ट के साथ कहाँ से लेते, उत्कृष्ट कब होगा, वो उसके उपपाद के समय होगा, उनमें उत्पन्न होने के समय होता है। आदेश निर्देश की अपेक्षा नारकियों में मोनी की उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, लोक के असंख्यात वे भाग क्षेत्र में रहते हैं। आप कहते हैं ना वो मारणांतिक करेंगे तो नहीं हो सकता है क्या, असंख्यात है, अनंत नहीं है फिर भी उनका रहने का क्षेत्र कितना है, और मारणांतिक करके जाएंगे सब जगह, वो स्पर्शन में कहेंगे हम। जब हम क्षेत्र देखते हैं तो वर्तमान में एक समय की बात होती है, और अनादि काल से अभी तक कहां कहां गए, तो पूरे लोक में जाएंगे, वहां पर वो स्पर्श में आएगी बात। तो यहां लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र में रहते, इसी प्रकार यहां उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट भी असंख्यात विभाग, ये कॉमन जिसमें जिसमें कथन है उसकी बातें करेंगे। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नारकी, सभी पंचेंद्रिय तिर्यंच, ये उत्कृष्ट की बात, अभी हम जगन्य की बात प्रमाण का वो पढ़े हैं ना, उसकी बात नहीं सोचना, हाँ उल्टा सोचना, अभी उत्कृष्ट की बात सोचनी है। सभी मनुष्य यानी यहाँ उत्कृष्ट का बंद करने वाले जीव, उनके उत्कृष्ट स्थिति होगी उस काल में, और उस काल को छोड़कर अनुत्कृष्ट स्थिति होगी। सभी मनुष्य, सभी देव, सभी विकलेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, अभी यहां तो मार्गणा की अपेक्षा लेना कि देव में है उत्कृष्ट स्थिति बांदी और मरकर, इनमें बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त में आए, बादर जल का एक पर्याप्त, अब बादर अग्नि का एक में तो नहीं आएंगे, परंतु बादर अग्नि का एक पर्याप्त में अन्य पंचेंद्रिय मनुष्य तिर्यंच आएंगे, उनकी अपेक्षा से ले सकते हैं। बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, सभी त्रस, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, वैक्रिक का योगी, वैक्रिक मिश्र का योगी, जो वैक्रिक मिश्र कहते हैं तो कौन हो गए, वैक्रिक मिश्र में उत्कृष्ट स्थिति किसके होगी, हाँ नारकी को लेना, जो तिर्यंच में उत्कृष्ट स्थिति बांधकर नगरक में पैदा हुआ, ऐसा लेना, उसके वैकरिक मिश्र के पहले समय में होगा। आहारक का योगी, आहारक मिश्र का योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, अपगत वेद वाले, अकषायी, विभंग ज्ञानी, आविनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी, अभी हम संख्या नहीं देख रहे, हम क्षेत्र देख रहे हैं, तो लोक का असंख्यात भाग क्षेत्र यहाँ इसमें घटित होगा। संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, यथाख्यात संयत, संयता संयत, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, पीत आदि तीन लेशा वाले, सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, वेदक हुआ वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, और संगी जीवों के जानना चाहिए, क्या जानना है, उत्कृष्ट भी लोक के असंख्यात विभाग और अनुत्कृष्ट भी लोक के असंख्यात विभाग में रहते हैं, हाँ? बादर जल का एक पर्याप्त नहीं लिया यहाँ ना, किस तरह से उसमें भी देव उत्पन्न होते हैं ना, हाँ और उनका रहना कहाँ है, बादर जल का एक पर्याप्त तो पृथ्वियों के आधार से हो गए, उनके रहने का ठिकाना कितना है, लोक का संख्या तो अभाव है, और उसमें भी ये उत्कृष्ट वाले और अनुत्कृष्ट वाले जीव रहते कहाँ हैं, उनकी संख्या से भी यहाँ कितने क्षेत्र में रहते हैं उसकी बात लेना है। आपने जो कहा ना ये बादर जो है लोक असंख्यात लोक प्रमाण है, फिर भी कहाँ रहेंगे, आठ पृथ्वी है ना, तो वो भाग कितना है, उसका क्षेत्रफल निकालो तो लोक का असंख्यात भाग होता है, उनकी संख्या इतनी है पर अवगाहना छोटी है बहुत। हाँ मारणांतिक की अपेक्षा आप पूछ रहे थे, तो स्पर्शन में मारणांतिक पूरा लोक होगा, स्पर्शन में हाँ हो गया ना बादल जल का ही फिर भी वो है तो लोक का असंख्यात्व भाग, ये बात से देखनी कहाँ कहाँ रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर भी है, अभी आकाश जैसे हम कहते हैं मेघ है, वहां भी जल है ना, उसकी बात कर रहे थे। हमने तो देवों के विमान भी कुछ वायु के आधार कुछ जल के आधार देखे थे, वहां भी है जल। बादर वायु का एक पर्याप्तों की स्पेशलिटी है। तो बादर वायु का एक पर्याप्त जीवों में उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं कि लोक के असंख्यात वे भाग क्षेत्र में रहते हैं, ये तो बात समझ में आई, क्योंकि उत्कृष्ट वाले जीव कम है। अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, लोक के संख्यात वे भाग क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि वो पांच राजू परमाणु त्रसनाली में रहते हैं, उसकी अपेक्षा ये संख्यात वा भाग कहा है। उत्कृष्ट वाले कम है, लोक का असंख्यात वा भाग बड़ा है कि लोक का संख्यात वा भाग बड़ा है? सौ का पांचवा भाग बड़ा है कि सौ का बीसवा भाग बड़ा है? ख्याल है ना, असंख्यात वा भाग है ना, उसकी प्रमाण बहुत छोटा है, संख्यात वा भाग है ना, प्रमाण बड़ा है उसका। विशेषार्थ, ओग से उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव असंख्यात है, और मार्गणाओं में से किसी में असंख्यात है किसी में संख्यात। जैसे हमने देखे कोई संयत है, आगे जो कोई मनुष्य पर्याप्त उनकी अपेक्षा भी जितनी मार्गणाएं हैं, अतः उत्कृष्ट स्थिति वालों का क्षेत्र सर्वत्र लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण कहा। किंतु अनुत्कृष्ट स्थिति वालों में ओह या आदेश से जिनका प्रमाण अनंत है उनका क्षेत्र सब लोग कहा। और जिनका प्रमाण असंख्यात है उनका क्षेत्र तीन प्रकार का है, किन्हीं मार्गणाओं का सब लोक क्षेत्र है, किन्हीं का लोक का संख्यात वा भाग क्षेत्र है, और किन्हीं का लोक का असंख्यात वा भाग क्षेत्र है। जिन मार्गणाओं का प्रमाण संख्यात है उनका क्षेत्र लोक का असंख्यात वा भाग ही है, जिन मार्गणाओं का जितना क्षेत्र है उनके नाम मूल में गिनाए ही है। इस प्रकार उत्कृष्ट क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ। उत्कृष्ट वाले जीव और अनुत्कृष्ट वाले जीव उनका क्षेत्र कितना है उसकी बात यहाँ बताई। अब जघन्य विभक्ति वालों में क्षेत्र बताएंगे। ओक की अपेक्षा जघन्य तो संख्यात है, तो उनका तो क्षेत्र लोक का असंख्यात वा भाग होगा, मनुष्य ही है ना। जघन्य की बात अभी सोचो, हाँ अभी उत्कृष्ट की मत सोचो। अब जघन्य स्थिति विभक्ति वाले क्षेत्रानुगम का प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ निर्देश की अपेक्षा मोनीय की जघन्य और अजघन्य स्थिति विभक्ति की अपेक्षा क्षेत्र का कथन उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति के समान है। यानी जघन्य का है वो लोक का असंख्यात वा भाग है और अजघन्य का पूरा लोक है। इसी प्रकार काय योगी यानी काय योगी में जघन्य और अजघन्य लोक का असंख्यात वा भाग और पूरा लोक, औदारिक काय योगी, नपुसक वेदी, क्रोधादि चारों कषाय वाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवों के जानना चाहिए। आदेश निर्देश की अपेक्षा नरक गति में मोनीय की जघन्य और अजघन्य स्थिति विभक्ति अपेक्षा क्षेत्र उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति के समान है। यानी दोनों का क्षेत्र लोक का असंख्यात वा भाग है, क्योंकि नारकी असंख्यात वा भाग में रहते हैं, तो उनमें जघन्य कहो या अजघन्य कहो क्षेत्र तो उतना ही रहेगा। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नारकी, सभी पंचेंद्रिय तिर्यंच, सभी मनुष्य, सभी देव, सभी विकलेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय, सभी त्रस, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, यह है ना, दोनों ही असंख्यात वे भाग वाले, उत्कृष्ट में भी लिया था अब जघन्य में भी ले रहे। बादर जल का एक पर्याप्त, बादर अग्नि का एक पर्याप्त, बादर वायु का एक पर्याप्त, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, ये वायु का एक पर्याप्त में तो संख्यात्वा भाग होगा हो, शायद बताएंगे बाद में। पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, वैक्रिक का योगी, वैक्रिक मिश्र का योगी, आहारक का योगी, आहारक मिश्र का योगी, ये सभी लोक के असंख्यात्व भाग में है। स्त्री वेदी कौमा पुरुष वेदी अपगत वेदी अकषायी विभंग ज्ञानी अभिनिबोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी मनपरे ज्ञानी संयत सामयिक संयत छेदोपस्थापना संयत परिहार विशुद्धि संयत सूक्ष्म सांप्रायिक संयत यथाख्यात संयत संयता संयत चक्षुदर्शनी अवधिदर्शनी पीत आदि तीन लेशा वाले सम्यक दृष्टि क्षायिक सम्यक दृष्टि वेदक सम्यक दृष्टि, इनकी संख्या कितनी भी हो तो लोक के असंख्यात्व भाग में ही रहते हैं। उपशम सम्यक दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि और संगी जीवों के जानना चाहिए, इतनी विशेषता यहाँ बताया। देखो बादर वायु का एक पर्याप्त जीवों में जघन्य स्थिति विभक्ति वाले और अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव लोक के संख्यात्वे भाग क्षेत्र में रहते हैं। जघन्य वाला भी और अजघन्य वाला भी दोनों। वायु का एक में दोनों असंख्यात हो गए ना, ये जघन्य की बात चल रही है अपन। उत्कृष्ट में भी हमने लोक का संख्यात्व भाग देखा था, अनुत्कृष्ट में ज्यादा और उत्कृष्ट में लोक का असंख्यात्व भाग, क्योंकि उत्पन्न होने वाले वो देव में से आए हुए, इसे लेना है जी। उत्कृष्ट में उत्कृष्ट वाले बादर वायु का एक पर्याप्त 114 पॉइंट उत्कृष्ट वाले कितने क्षेत्र में लोक के असंख्यात भाग, उनकी संख्या बहुत कम है, और अनुत्कृष्ट वाले कितने तो लोक के संख्यात भाग क्षेत्र। अब यहाँ क्या लेना है, हाँ क्योंकि जघन्य जीव ज्यादा हो गए, उत्कृष्ट तो देव में से आने वाले हैं और जघन्य उन्हीं पर्याय में रहने वाले जो हत समुत्पत्तिक वाले उनकी संख्या ज्यादा होगी, इसलिए जघन्य अजघन्य दोनों को लोक के संख्यात भाग में लिया, जघन्य वाले भी और अजघन्य वाले भी। अब तिर्यंचों में मोनी की जघन्य और अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, सब लोक में रहते हैं, तिर्यंचों की अपेक्षा से वहां जघन्य अजघन्य लेना। तो तिर्यंचों में जघन्य तो एक इंद्रियों में घटित होता है, हाँ तो पूरे लोक में है। इसी प्रकार सभी एक इंद्रिय पृथ्वी का एक बादर पृथ्वी का एक बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त पर्याप्तों की बात अभी ऊपर बता चुके हैं। सूक्ष्म पृथ्वी का एक सूक्ष्म पृथ्वी का एक पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्त जल का एक बादर जल का एक कौमा बादर जल का एक अपर्याप्त सूक्ष्म जल का एक पर्याप्त सूक्ष्म जल का एक अपर्याप्त अग्नि का एक बादर अग्नि का एक बादर अग्नि का एक अपर्याप्त सूक्ष्म अग्नि का एक सूक्ष्म अग्नि का एक पर्याप्त सूक्ष्म अग्नि का एक अपर्याप्त वायु का एक बादर वायु का एक बादर वायु का एक अपर्याप्त सूक्ष्म वायु का एक सूक्ष्म वायु का एक पर्याप्त सूक्ष्म वायु का एक अपर्याप्त बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त सभी वनस्पति का एक सभी निगोद औदारिक मिश्र का योगी कार्मण का योगी मत्स्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी असंयत कृष्ण आदि तीन लेशा वाले अभव्य मिथ्या दृष्टि असंगी और अनाहारक जीवों के जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, पूरे लोक में रहते हैं। यहाँ पर मूलोच्चारणा का पाठ है, कि तिर्यंचों में मोनी की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव लोक के संख्यातवे भाग क्षेत्र में रहते हैं तथा अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव सब लोक में रहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि स्वस्थान विशुद्ध बादर एकेंद्रिय पर्याप्तकों में ही जहाँ तक जघन्य स्वामित्व है वहां तक उक्त क्षेत्र प्राप्त होता है। उसका अर्थ बताते हैं, तात्पर्य है कि तिर्यंचों में जघन्य स्थिति बादर एकेंद्रिय पर्याप्तकों के ही प्राप्त होती है। हाँ, तो जघन्य में वो बादर एकेंद्रिय उस अपेक्षा से बादर एकेंद्रिय पर्याप्तों को ही जघन्य स्थिति करके जघन्य बंध उन्हीं के होता है, वो पर्याप्तों में थोड़ा ज्यादा रहता है, उस अपेक्षा से यहाँ लेना। पर्याप्तों में उत्कृष्ट भी पर्याप्तों में, जघन्य भी पर्याप्तों, और वो बीच वाला जो है उसमें अपर्याप्त लेने। और उनका क्षेत्र लोक के संख्यात्वे भाग से अधिक नहीं, इसलिए सामान्य तिर्यंचों में जघन्य स्थिति वाले जीवों का क्षेत्र उक्त प्रमाण बतलाया है। इसी प्रकार लोक का संख्यात्व के असंख्यात्व पहले संख्यात्वा कहाँ कहा था, कहिए मूलोच्चरणा के अपेक्षा से बात बता रहे, मूलोच्चरणा वालों की अपेक्षा से बात है। तात्पर्य इन्होंने लिखा, देखो देखो ऊपर तो क्या लिखा था, इसका अभिप्राय है कि स्वस्थान विशुद्ध बादर एकेंद्रीय पर्याप्तकों में ही जहाँ तक जघन्य स्वामित्व है वहां तक उक्त क्षेत्र प्राप्त होता है। ऊपर क्या लिखा, एदस अहिपाओ सत्थान विशुद्ध बादर इंद्रिय पज्जत्तयेषु चैव जघन्य सामित्तम जावमिदम। वो तात्पर्य वो उन्होंने लिख दिया है। हाँ ऐसा है ना, उनमें भी विशुद्धि और संकलेश होती है, एक इंद्रियों में भी विशुद्धि के स्थान और संकलेश के स्थान होते हैं। अब जघन्य स्थिति कौन बांधेगा, और जघन्य स्थिति यानी सत्कर्म भी कौन करेगा जिसकी विशुद्धि ज्यादा है, इसलिए वह स्वस्थान विशुद्ध कहा। स्वस्थान क्योंकि वो बादर एकेंद्रियों में ही उसने ये बात की है, अन्यत्र घटित करके आया हुआ उसको नहीं लिया है, इसको स्वस्थान विशुद्ध कहते हैं। उनके योग्य विशुद्धि जो है, देखो पंचेंद्रियों में भी विशुद्धि होगी अपने योग्य जगह एकेंद्रियों में होगी, तो एकेंद्रियों के योग्य जो विशुद्धि है उसको लिया यहाँ पर। इनके विशुद्धि के और संकलेश के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान इनके भी हो गए। हाँ तो ये मूलोच्चरणा के पाठ के अनुसार लोक का संख्यात वा भाग क्षेत्र कैसे घटित होता है उसको उन्होंने बताया। मूलोच्चारणा मूल उच्चारण, मैंने यदि मूलोच्चरण कहा होगा तो मूलोच्चारण सुनना अभी। हाँ उच्चारण है ना, वहां देखो तात्पर्य से फिर पढ़ते। तात्पर्य यह है कि तिर्यंचों में जघन्य स्थिति बादर एकेंद्रिय पर्याप्तकों के ही प्राप्त होती है। बादर एकेंद्रिय पर्याप्त लिए जनरल सब, और उनका क्षेत्र लोक के संख्यात्व भाग से अधिक नहीं, क्योंकि हमने देखा था बादर केंद्रीय में तो वायु का एक पर्याप्त लोक के संख्यात्व भाग में रहते हैं। तो यहाँ बादर केंद्रीय पर्याप्त इतनी बात करेंगे तो लोक का संख्यात्व भाग घटित होगा, तो उससे अधिक नहीं। इसलिए सामान्य तिर्यंचों में जघन्य स्थिति वाले जीवों का क्षेत्र उक्त प्रमाण बतलाया है। समझ में आए मैं क्या कहना चाहती थी? बादर एकेंद्रीय पृथ्वी का एक आधी बात नहीं, हम यहाँ बादर एकेंद्रीय जनरल बात की है। तो हमने तो देखा था कि वायु का एक कहाँ रहते हैं, लोक की संख्या विभाग में, तो उनको लेना यहाँ सब कायिकों में उनकी अपेक्षा लगाओ तो लोक का संख्यात्वा भाग हो जाएगा। इसी प्रकार एकेंद्रीय बादर एकेंद्रीय, बादर एकेंद्रीय पर्याप्त, बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त, वायुकायिक बादर वायुकायिक और बादर वायुकायिक अपर्याप्त जीवों के कहना चाहिए। यानी एकेंद्रियों में जो संख्यात्वा भाग कहते हैं वो वायुकायिकों की अपेक्षा है, क्योंकि यहाँ सब में नहीं घटित किया, पृथ्वीकायिक आदि अलग अलग नहीं घटित किया, वो एकेंद्रीय और बादर एकेंद्रीय में आ गए, फिर भी वहां अपेक्षा संख्यात्वा भाग की किस अपेक्षा से? वायुकायिकों की अपेक्षा। तथा इस अभिप्राय अनुसार पृथ्वीकायिक आदि चार स्थावर काय, उनके बादर और उनके बादर अपर्याप्त जीवों में जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव लोक के असंख्यात्व भाग क्षेत्र में रहते हैं, तथा अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव सब लोक में रहते हैं। मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, कृष्ण आदि तीन लेशा वाले अभव्य, मिथ्या दृष्टि और असंगी जीवों के बादर वायुकायिक जीवों के समान क्षेत्र हैं, क्योंकि एक बार उनको बादर वायुकायिकों को लोक का संख्यात्वा भाग घटित किया तो जब मिथ्या दृष्टि कहेंगे तो वो भी उसमें आ गए। वो बात यहां बताना चाहते हैं। तथा इसी के अनुसार स्पर्शन का कथन करना चाहिए। इस प्रकार यही विवक्षा यहाँ पर प्रधान है। ये जो संख्यात्वा भाग घटित किया है वो कौन सी अपेक्षा से, वो बात यहाँ बताई। अब इसी का विशेषार्थ और बताएंगे। ओग से जघन्य स्थिति वाले जीव संख्यात है, ओग की अपेक्षा बात चलती है, और मार्गणाओं की अपेक्षा किसी में अनंत है, किसी में असंख्यात है, किसी में संख्यात है। मार्गणा की अपेक्षा जघन्य स्थिति वाले अनंत कहाँ होगे? हाँ, एकेंद्रीय कहो या स्पेसिफिक कहना है तो वनस्पति काय कहो, और स्पेसिफिक कहना है तो निगोद कहो। हाँ, इनमें से जिन मार्गणाओं में जघन्य स्थिति वाले संख्यात जीव है उनका वर्तमान क्षेत्र लोक के असंख्यात भाग प्रमाण ही प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य है, यह सभी संयत, सभी प्रकार के संयत है, या तो वेद वाले जीव है, जहां जहां वो दसवा गुणस्थान होता है ऐसी मार्गणाओं में लोक का असंख्यात भाग ही होगा। इनमें से नहीं, वो पढ़ा मैंने तीसरी लाइन, जिन मार्गणाओं में असंख्यात है उनमें से कुछ मार्गणाएं तो ऐसी है जिनका वर्तमान क्षेत्र लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही है, जैसे सातों नरकों के नारकी आदि, तथा बादर वायु का एक पर्याप्त यह मार्गणा ऐसी है, ये केवल बादर वायु का एक पर्याप्त में वो संख्यात्वा भाग है, जिसकी अपेक्षा जघन्य स्थिति वाले जीवों का क्षेत्र लोक के संख्यातवे भाग प्रमाण है। इनके अतिरिक्त जो अनंत संख्या वाली और असंख्यात संख्या वाली मार्गणाएं शेष रहती है उनकी अपेक्षा जघन्य स्थिति वाले जीवों का वर्तमान क्षेत्र सब लोग प्राप्त होता है। जैसे सामान्य तिर्यंच, एकेंद्रीय, पृथ्वीकायिक आदि, ये जनरल की बात की क्योंकि उसमें सूक्ष्म भी आ गए ना। पर इस विषय में मूलोच्चारणा में जो पाठ पाया जाता है उसका यह अभिप्राय है कि मूल में असंख्यात संख्या वाली और अनंत संख्या वाली जिन मार्गणाओं की जघन्य स्थिति वाले जीवों का क्षेत्र सब लोग कहा है, उनमें से पृथ्वी का एक आदि चार स्थावर काय, उनके बादर तथा बादर अपर्याप्त जघन्य स्थिति वाले जीवों का क्षेत्र तो लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण ही है। किस किस को लिया? चारों स्थावर काय इन जनरल, उनके बादर और बादर अपर्याप्त, बादर इन जनरल और बादर अपर्याप्त, अने बादर पर्याप्तों को छोड़कर, तो उनका क्षेत्र कितना है? लोक का असंख्यात भाग प्रमाण ही है। इन्हें छोड़कर शेष सब जघन्य स्थिति वाले जीवों का क्षेत्र लोक के संख्यात विभाग प्रमाण है। इसका कारण हमने क्या पढ़ा था? क्योंकि जो जघन्य स्थिति किस में पाई जाती है? वो बादर पर्याप्तों में ही पाई जाती है। सो वीरसेन स्वामी ने इस मतभेद का यह कारण बतलाया है, ऊपर जो सब लोक क्षेत्र कहा वह मारणांतिक समुद्घात आदि की अपेक्षा कहा। मतभेद क्या है? जब क्षेत्र कहते हैं तो उसमें समुद्घात विहार ये सब लगा सकते हैं, तो मारणांतिक की अपेक्षा सब लोग कहा, और मूलावचारणा में जो कुछ का लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण और कुछ का लोक के संख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र कहा, वह स्वस्थान स्वस्थान की अपेक्षा कहा। स्वस्थान स्वस्थान यानी वहाँ जहाँ वो जीव पाए जाते हैं उसको स्वस्थान स्वस्थान कहेंगे, उनका अपना रहने का ठिकाना। अतः दोनों कथनों में कोई विरोध नहीं है। फिर भी वीरसेन स्वामी इन दोनों में से मूलोच्चारणा के अभिप्राय को प्रधान मानते हैं और उसके अनुसार स्पर्शन के कथन करने की सूचना भी करते हैं। अब रहा ओह और आदेश से अजघन्य स्थिति वाले जीवों का क्षेत्र। सो ओह या आदेश से जिसका जितना क्षेत्र बतलाया है, अजघन्य स्थिति की अपेक्षा भी उसका उतना ही क्षेत्र जानना। क्योंकि सर्वत्र यद्यपि जघन्य स्थिति वाले जीव कम हो जाते हैं, फिर भी इससे अजघन्य स्थिति की अपेक्षा उनके क्षेत्र में न्यूनता नहीं आती, यानी अजघन्य वाले का तो क्षेत्र उतना ही घटित हो जाता है। इस प्रकार क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ। अब स्पर्शानुगम चलेगा। अनुगम नंबर कितना है? ये भी 17 नंबर। हाँ, इसमें भी दो प्रकार है, जघन्य और उत्कृष्ट। क्षेत्र कहते तो वर्तमान का बताया जाता है और स्पर्श कहते तो त्रिकालवर्ती होता है। उनमें से उत्कृष्ट स्पर्शनानुगम का प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। अभी फिर उत्कृष्ट की बात सोचना है। हाँ, उनमें से ओघ निर्देश की अपेक्षा मुनि की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का, ये उनका वर्तमान का क्षेत्र है, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव हो गए मिथ्या दृष्टि, तो उनमें उत्कृष्ट स्थिति पाई जाएगी। तथा त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8, ये किस अपेक्षा? विहार करने वाले, नीचे दो राजू नीचे तक जाते हैं, और कुछ कम 13 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। नारकियों को और देवों को उत्कृष्ट स्थिति वाले लिए, तथा मारणांतिक लिए कुछ कम 13 भाग मारणांतिक, क्योंकि नारकी भी मारणांतिक करेंगे उत्कृष्ट स्थिति बांधकर। नारकी बांध सकते हैं ना उत्कृष्ट स्थिति, वो भी मारणांतिक करेंगे, और देव उत्कृष्ट स्थिति बांधकर मारणांतिक करेंगे, तो देवों को कहां तक लेना? हाँ, नीचे आए हैं ऊपर की पृथ्वी तक, यानी ऊपर कितने राज्य हुआ? अभी हमने नारकियों को लिया है, वो आठ नहीं लेना उसको या नौ नहीं लेना, क्योंकि नौ और प्लस नारकी के मिला देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो मध्य लोक से ऊपर गिनो और नीचे गिनो, ख्याल है ना? नारकी मध्य लोक तक करेंगे, अब मध्य लोक से जितना ऊपर है उतना ही गिनो, तो ऊपर सात और नीचे छह। स्पर्शन में भूतकाल है, नहीं तीनों काल, तो भूतकाल में हो चुका वही वर्तमान और भविष्य में। कैसे मनुष्यों में कौन आएंगे अभी? ये उत्कृष्ट बंध करने वाले कौन है उसकी बात पहले सोचो। यहाँ ओ की अपेक्षा उत्कृष्ट चल रहे हैं ना पहले में, पहले तो सत्तर कोड़ा कोड़ी वाला बंध वो ले लो, अभी ओ की अपेक्षा उत्कृष्ट वो कहाँ कहाँ पॉसिबल है। तो जिस काल में उत्कृष्ट बंध कर रहा है उस काल में मारणांतिक करेगा, ऐसे जीव लेंगे। तो नारकी सातवें नरक से लेकर उसने ऊपर करने वाले पृथ्वी में करने वाले जीव लेना। ये हम पढ़ रहे थे ना, तो कुछ कम तेरह भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। कुछ कम में जो हमने देखा था सातवां नरक, नीचे से हजार योजन जमीन के ऊपर यानी बीच में होता है, इसलिए उसको कुछ कम कर देना। क्योंकि हमने देखा था जो अन्यत्र उत्पन्न होते तो अंतर्मूर्त के बाद वो मरते हैं। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है, यानी पूरा लोक होगा। इसी प्रकार काय योगी, क्रोधादि चारों कषाय वाले, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, भव्य अभव्य दोनों लिए हो, मिथ्या दृष्टि और आहारक जीवों के कहना चाहिए। अनाहारक अवस्था में वो उत्कृष्ट बंध नहीं होगा, इसलिए लिया उसको। यहाँ मोनी की उत्कृष्ट स्थिति वालों का जो लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण स्पर्श बतलाया है, वह वर्तमान काल के मुख्यता से बतलाया है। जब स्पर्श में तीन बातें बताते, एक वर्तमान क्षेत्र बताते, फिर विहार की अपेक्षा बताते और मारणांतिक की अपेक्षा बताते। तो वर्तमान काल की मुख्यता से, क्योंकि मोनी की उत्कृष्ट स्थिति, सातों नरकों के नारकी, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच, पर्याप्त मनुष्य व बारहवें स्वर्ग तक के देवों को ही संभव है। क्योंकि हमने देखा था ऊपर भले मिथ्या दृष्टि हो गए परंतु वो तो उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांधेंगे, वहां शुक्ल लेशा है, उनकी अंत कोड़ा कोड़ी सागरी होगी उत्कृष्ट स्थिति, बंधने की भी और वहां सत्ता की भी। पर इन सबका वर्तमान क्षेत्र लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण ही है। त्रसनाली के चौदह भागों में से जो कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह भाग प्रमाण स्पर्श बतलाया है, वह अतीत काल की अपेक्षा से बतलाया है। क्योंकि विहारवत स्वस्थान, अभी इसमें कितने पद लगते मालूम है? जब हम क्षेत्र और स्पर्श देखते हैं तो कितने पद यानी कितनी कितनी अपेक्षाएं लगती है उसमें। एक विहारवत स्वस्थान, एक स्वस्थान स्वस्थान, एक विहारवत स्वस्थान, समुद्घात कितने हैं? सात है, और कौन क्या रह गया? उपपाद रह गया। तो ऐसे दस पद होते, उसको पद कहते हैं। कौन कौन से? स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रिक, मारणांतिक है, तेजस है, आहारक है, केवली समुद्घात है और उपपाद। उपपाद यानी जन्म का पहला समय, उसको उपपाद कहते हैं। वो उपपाद जन्म देव नारकियों का उसकी बात नहीं है। जैसे मारणांतिक में उसके प्रदेश फैलते हैं, वैसे उपपाद यानी विग्रह गति के, यानी यहाँ मरण हुआ और पहला समय वाला जो है उसको उपपाद कहेंगे। मरण जहां हुआ वहां से लेकर पहले विग्रह तक उसने एक समय तक सीधा चला गया ना, उसको उपपाद कहेंगे। रुजुगति से जाने वाला उसी समय वहां पहुंच गया, और मोड़ वाला मोड़ तक गया, फिर उसने टर्न लिया, फिर दूसरे समय में प्रवेश कर गया, तो हमेशा पहला समय उपपाद वाला कहलाता है, उसकी अपेक्षा से भी। जैसे हमने देखा ना, कोई सूक्ष्म है त्रस नाली के बाहर वाला और वो त्रस होता है, तो उपपाद में जो है वो बाहर है, अभी त्रस होते हुए भी बाहर है, त्रस नाली के बाहर है, तो उसको उपपाद की अपेक्षा वो त्रस है बाहर, ऐसा कहेंगे। यानी वो उस पर्याय का पहला समय, उसको उपपाद कहेंगे। ऐसे ये 10 पद होते हैं क्षेत्र में और स्पर्शन में। तो जहाँ ये मारणांतिक आदि अन्य अन्य अपेक्षा जहाँ लगती हो, जहाँ जो मार्गणाएं में जो जो कुछ लगता है, जैसे नारकियों में गठित करेंगे तो आहार तेजस वगैरह वो समुदाय कहाँ हो गए उसमें, तो वहां जितना वेदना कषाय हो सकता है मारणांतिक, उसको वहां लेना है। यहाँ क्या लिखा देखो, अभी हमने जो पढ़ा था नीचे से पांचवी लाइन फिर पढ़ते हैं। मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति के रहते हुए, नहीं उसके ऊपर हम पढ़ा था कुछ कम, 13 वाक्य है ना कि नहीं, क्योंकि ऊपर से पांचवी लाइन, छठी लाइन कितनी है अभी, क्योंकि से पांचवी लाइन मिला। अतीत काल की अपेक्षा से बतलाए क्योंकि विहार व स्वस्थान वेदना कषाय और वैकृत पद से परिणत हुए मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति वाले जीवों ने कुछ कम 8 भाग स्पर्श किया है, क्योंकि देव विक्रिया करके मध्यलोक से नीचे 2 राजू तक जाते हैं, और मारणांतिक समुदाय से परिणत हुए मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति वाले जीवों ने कुछ कम 13 भाग स्पर्श किया है। तो ऊपर 8वीं पृथ्वी तक यानी मध्यलोक से 7 राजू ऊपर, और नीचे 7वें नरक से मध्यलोक में आने वाले वो 6 राजू, इसे 13 राजू। मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति के रहते हुए, ये बात देखो, तेजस आहारक और उपपाद ये 3 पद संभव नहीं, ओ की अपेक्षा उत्कृष्ट की बात चल रही नहीं अपन, हाँ उपपाद एक समय कम हो जाएगा, देवों की भी हमने बात की थी, 70 कोड़ा कोड़ी में एक समय घट गया था उनका, एक समय घटा ना उत्पाद उपपाद के समय, एक समय कम लिया था हमने, मार्गणा में हयस था, यहाँ ओक की अपेक्षा हयस बात चल रही, ओक की बात चल रही नहीं यहाँ पर, ओघ में जो हम स्पर्श गिन रहे हैं उसकी बात चल रही है यहाँ पर। तो मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति के रहते हुए हमने देखा, मनुष्य में से भी अंतर्मूर्त के पश्चात मरेगा वो, और देव में भी दूसरे समय में मरा ऐसा देखा। हाँ, स्वस्थान स्वस्थान पद अवश्य होता है, चारों गति में स्वस्थान स्वस्थान की अपेक्षा उत्कृष्ट बंध कोई करेगा, उत्कृष्ट स्थिति भी होगी उसकी। सो इसकी अपेक्षा स्पर्श लोक के असंख्यात भाग प्रमाण जानना चाहिए, स्वस्थान स्वस्थान की अपेक्षा। तथा मोहिनी की अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का क्षेत्र, जबकि सब लोक है तब स्पर्श तो सब लोग होगा ही, कुछ मार्गणाएं भी ऐसी है जिनमें यह ओघ प्ररूपणा अविकल बन जाती है, जो अभी हमने क्रोधादि कषाय वाले कायोग वाले वगैरह देखा था उसमें भी यही कथन होता है। अतः उनके कथन को ओग के समान कहा, जैसे कायोग आदि कायोगी आदि। अब यहीं रुकते हैं अभी हम, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन भाई।